ओम शांति, ओम शांति। आज 25 दिसंबर है। क्रिश्चियनिटी के अनुसार क्रिसमस डे है और हम बच्चों के लिए हर दिन सेलिब्रेशन का दिन है। क्रिसमस दिवस पर सबको मेरी क्रिसमस और क्रिसमस डे की बहुत बहुत मुबारक हो। बाबा क्रिसमस फादर के रूप में बच्चों को ना जाने कितने गिफ्ट्स देते हैं। क्रिसमस फादर आकर के बच्चों को बहुत गिफ्ट देते हैं, अमृत वेले से लेकर के बाबा हम बच्चों को वरदानों के कितने गिफ्ट्स देते हैं। और हर एक के पास बाबा रत्नों की थालियां भर कर देते रहते हैं। ये सारे विश्व के अंदर तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन बाबा भी हम बच्चों को क्या कहते हैं, सदा खुशियों में नाचो और खुश रहो, खुशियों के गिफ्ट बांटते रहो और वरदानों से भरपूर होकर के दूसरों को भी वरदान देते रहो। और वो क्रिसमस पे बहुत सुंदर गीत गाते, जिंगल बेल जिंगल बेल। इसका भी एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। बाबा बेल का अर्थ क्या होता है, खुशी। बेल का अर्थ है साइन, इशारा। बेल बजती है तो अलर्ट हो जाते हैं, बेल बजती है तो ध्यान खिंचवाया जाता है। हमें याद आता है साकार बाबा के टाइम पर भी बेल बजती थी, क्लास के टाइम के लिए भी बेल बजती थी। और यहाँ जो रत्नमय दादी का ऑफिस है उसके बाहर छत पर एक बेल लगी हुई थी, वो बेल बजती थी। और उस जो बाहर गैलरी ना तो उसमें बेल लगी हुई थी और वो बेल बजती थी। बाबा खाने का टाइम है तो बेल बजती थी। और कहाँ कहाँ पहले एक बेल लगी हुई थी शांति स्तंभ के सामने, एक जो पेड़ है जो अभी उसको वहाँ पेड़ नहीं है, वहाँ गमले आदि रख दिए गए, वहाँ पर बहुत बड़ी बेल रखी हुई थी। और वो बेल बजती थी तो पता पड़ जाता था कि अभी खाने का टाइम है, अभी क्लास में जाने का टाइम है। फिर एक बेल जो है रत्नमंदाजी के ऑफिस के बाहर जो ऊपर छत है वहां पर बीच में बेल लगी हुई थी। दादी के टाइम पर वो बेल थी और बेल बजती थी तो मालूम पड़ता था कि अभी कहाँ किस प्रोग्राम में जाना है, खाने के लिए जाना है, अभी क्लास के लिए जाना है। जी मनमोहिनी जी अब रात की क्लास होती थी तो उस समय एक बेल बजती थी कि रात की क्लास का, जैसे भी गीत बजता है ना अनाउंसमेंट करते हैं, उस समय बेल बजती थी और सबको पता होता था कि रात्रि क्लास अभी आरंभ होने वाली है। और हमारी दीदी मनमोहिनी इतनी एक्यूरेट क्लास के लिए, और क्लास में आरंभ होने से पहले 3 मिनट पहले वो आंगन में खड़ी हो जाती थी तो सब भाई बहने ऐसे दौड़ते थे, कहते दूसरी बेल बज गई है, अभी दूसरी बेल बज गई है। और दीदी के साथ साथ सब के सब क्लास में जाते थे। तो इसलिए बाबा भी हमको क्या कहते, बच्चे खुशियों के बेल बजाओ, खुशियों में नाचो, झूमो, गाओ। लेकिन बेल का अर्थ है कि हमारे को इशारा मिलता है कि अब हमें क्या करना है। तो हमारे लिए रोज के जो अव्यक्त इशारे हैं वो हम सब के लिए इतने पावरफुल हैं, इतने इशारे हैं जो बाबा बीच बीच में हम बच्चों को देते हैं। तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी प्यारे बाबा ने आज की मुरली के अंदर बच्चों से बहुत अच्छी मीठी रूहान की है। बाबा ने कहा जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं उनकी निशानी क्या है, दो निशानियां बताई। एक तो वो कभी भी मुरली मिस नहीं करेंगे, दूसरा बाबा ने कहा वो चार्ट लिखेंगे। चार्ट लिखना मीन्स चेकिंग करना। फिर बाबा ने कहा इस समय तुम बच्चे किसी से राजी खुशी नहीं पूछ सकते हो, क्योंकि तुम्हें तुम जो जिसकी परवाह थी वो तो मिल गया है, कोई भी आपसे पूछे राजी खुश हो तो उनको क्या जवाब देना है, हमें जिसे पाना था वो तो मिल गया है, हम खुश हैं। बाबा ने कहा बीमारी भी हो तो बीमारी में भी खुश रहना है, उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छा इशारा दिया है। फिर बाबा ने कहा देखो तुम्हारी यात्रा और दूसरी यात्राओं में कितना अंतर है, तुम भी यात्रा पर हो और बाहर वाले भी यात्रा करते हैं, उनकी यात्रा में वो आवाज करते हैं, अब देखते हैं ना जबकि वो जाते हैं यात्रा करते जाते हैं, गीत गाते जाते हैं, झांड बजाते जाते हैं, आवाज करते जाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा तुम्हारी यात्रा जो है वो डेड साइलेंस की है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 25 दिसंबर 2024। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलना, यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वे मुरली जरूर पढ़ेंगे। कदम कदम श्रीमत पर चलना ये हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वे मुरली जरूर पढ़ेंगे। आज का प्रश्न है तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है, तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कभी भी कोई पूछ नहीं सकता है। इसका उत्तर है तुम बच्चों से ये कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुश हो, पूछते ना लोग दुनिया में सब ये के खुश हो राजी हो वो पूछते हैं, बाबा कहते ब्राह्मणों से ये पूछ ही नहीं सकते, तुम बच्चों से ये कोई भी पूछ नहीं सकता कि तुम राजी खुशी हो, क्योंकि तुम कहते हो हम सदैव राजी हैं। परवाह थी बार ब्रह्म रहने वाले बाप की, वह मिल गया है बाकी किस बात की परवाह करनी है, तुम भल बीमार हो तो भी कहेंगे हम राजी खुश हैं। ईश्वर के बच्चों को किसी भी बात की परवाह नहीं, बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने भरपूर कर दिया है, तो बाबा कहते ईश्वर के बच्चों को किसी भी बात की परवाह नहीं। बाप जब देखते हैं कि इन पर माया का वार हुआ है तो पूछते हैं बच्चे राजी खुश हो, बाबा सबको नहीं पूछते, तो बाबा तो हर एक की खुशी को देख के समझ जाते, कोई मुरझाया होता था ना बाबा कहते थे क्या हुआ है तुमको, तुम खुश नहीं हो, खुश हो बाबा पूछते थे। ओम शांति। बाप समझाते हैं बच्चों की बुद्धि में ये जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है, इस याद में जरूर होंगे, ये याद कभी कोई सिखला न सके, वो बाप भी है टीचर भी है गुरु भी है, तो बाबा कहते ये याद तो कोई सिखला न सके, कल्प कल्प बाप ही आकर सिखलाते हैं, वह ज्ञान सागर पतित पावन है, वह अभी समझाया जाता है जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र, जबकि ज्ञान का सागर आकर सिखलाते हैं, वह ज्ञान सागर पतित पावन है, ये अभी समझाया जाता है जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि मिलती है। बच्चे भी समझते होंगे परंतु बाप को भी भूल जाते, बाबा ने दिव्य नेत्र दिया है दिव्य बुद्धि दी है, लेकिन फिर भी क्या होता है जानते भी हैं फिर भी बाप को भूल जाते हैं, बच्चे भल समझते भी होंगे परंतु बाप को भूल जाते हैं, तो कहते हैं बाबा हम हार खा गए, ये तो कदम कदम में पदम है, परंतु हार खाने से पदम कैसे होंगे, बाबा बच्चे बाबा के बनते हैं तो उनको क्या टाइटल मिल जाता है कदम कदम में पदम है, बाबा के चले हार जाएंगे तो फिर पदम कैसे मिलेंगे। माया बाबा कहते भाई बच्चे समझते होंगे परंतु बाप को भूल जाते हैं, और कहते हैं कि हम हार खा गए, वो तो कदम कदम में पदम है, परंतु हार खाने से पदम कैसे होंगे। देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, ये ईश्वर की पढ़ाई है, ऐसे मनुष्य की पढ़ाई कभी हो ना सके। कोई भी मनुष्य है उनकी ऐसी पढ़ाई नहीं होती जो बाबा पढ़ाते हैं, तो बाबा कहते ऐसी कोई पढ़ाई मनुष्य कोई पढ़ा ना सके, ऐसी मनुष्य की कभी भी पढ़ाई हो ना सके। भाई देवताओं की महिमा की जाती है, फिर भी ऊंच से ऊंच है एक बाप, बाकी उनकी बढ़ाई क्या है। बाबा देखो इतने निर्माण जितने इतना ऊंच है बाबा की, तो उनकी फिर इतनी बढ़ाई महिमा क्या है, बाकी उनकी बढ़ाई क्या है। दुनिया में भी देखो किसकी कोई बढ़ाई है क्या। बाबा बता रही हैं आज गदाई है कल राजाई, आज उसको सीट पे बिठाती है कल जाकर के उसको उतार देते हैं। सीट पर बैठे बैठे भी तो उनको कितना तंग करते हैं, कितना ऑपोजिशन होता है। तो बाबा कहते हैं सीट क्या है, गदाई जैसी है, आज गदाई है कल राजाई है। अभी तुम पुरुषार्थ कर ये बन रहे हो, जानते ही इस पुरुषार्थ में बहुत फेल होते हैं, ज्ञान तो बहुत सहज है फिर भी इतने थोड़े पास होते हैं। क्यों इतना सहज ज्ञान है फिर भी कम पास होते हैं, क्यों माया घड़ी घड़ी भुला देते हैं। बाप कहते हैं अपना चार्ट रखो, क्यों बाबा पक्का करा रहे हैं, क्योंकि माया भुला देती है तो उसको ठीक करने की युक्ति है अपना चार्ट रखो, परंतु लिख नहीं पाते हैं कहाँ तक बैठ लिखें। कई बच्चे ऐसे लिखते रहते अभी भी लिखते हैं, कई तो लिखते लिखते छोड़ देते हैं, कहते हैं कि कहाँ तक बैठ करके हम ये चार्ट लिखेंगे, कहाँ तक बैठ लिखें। अगर लिखते भी हैं तो कभी अप है कभी डाउन है, कोई ऐसे लिखते भी हैं कोई तो छोड़ देते हैं, और कई ऐसे हैं कईयों का चार्ट एकदम हाई कभी एकदम नीचे हो जाता है। तो बाबा को पता है ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर लिखते भी हैं तो कभी अप कभी डाउन। हाईएस्ट चार्ट उनका होता है जो कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। चार्ट लिखने वाले कई भाई बहने अभी तक भी चार्ट लिखते, जो चार्ट लिखते हाथ खड़ा करो, बहुत है। तो बाबा कहते हैं तो जो लिखते हैं बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो उनका चार्ट भी हाई होता है। हाईएस्ट चार्ट उनका होता है जो कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। बाप तो समझेंगे इन विचारों को लज्जा आती होगी, जो चार्ट नहीं लिखते हैं छोड़ देते हैं तो बाबा तो समझ जाते हैं इनको लज्जा आती होंगी। नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए, 1-2% मुश्किल ही लिखते हैं। बाबा ने रिजल्ट बता दिया, 1-2% ही मुश्किल लिखते हैं, श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है, मुरली मिलती है तब भी पढ़ते नहीं। अब तो मुरली उस समय तो क्या था, बाबा के टाइम पर मुरली पोस्ट से जाती थी, और मुरली जब जाती थी पोस्ट से कभी 8 दिन लेट मिली कभी कैसे मिली, तो भी बाबा कहते हैं जिसको प्यार होता तो पढ़ते थे। अब तो मुरली के हर एक के हाथ में है, मोबाइल में भी मुरली है, जितनी बार देखो मुरली मुरली है, और मुरली सुनाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी याद नहीं रहती ना। तो बाबा क्या कहते हैं, मुरली मिलती है तब भी नहीं पढ़ते हैं। उनको दिल में जरूर लगता होगा कि बाबा कहते तो सच है, हम मुरली नहीं पढ़ते हैं तो फिर औरों को क्या सिखलाएंगे। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाने वाला भी आ गया, और सदगति दाता भी आ गया, तीनों ही आ जाते बाप टीचर सदगुरु। बाबा शब्द में ही मेरे को याद करो तीनों बातें आ जाती। तो बाबा कहते इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया, थोड़े थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता। बाबा को याद करना इसमें ही सब आ जाता है। यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने, उस दिन बाबा ने क्या कहा, यहाँ आते हो रिफ्रेश होने के लिए। और आज बाबा बता रहे हैं कि जो कुछ प्राप्त करते हो उसका अनुभव और रिवाइज करने के लिए यहाँ तुम आते हो रिवाइज करने। भाई बात तो यही समझाते हैं क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते। बाबा क्यों बार बार वही बात पक्का कराते हैं, बाबा को याद करो, क्योंकि बच्चे बार बार बाबा को कहते बाबा हम भूल जाते हैं, क्योंकि तुम भी खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। भाई कोई करते भी है तो भी रिवाइज नहीं होता, करते जरूर है लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करेंगे, कितना भी को पुरुषार्थ करो तकदीर में नहीं हाँ हाँ करके छोड़ देते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे, तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, इसमें कोई की पांच खातरी नहीं हो सकती है। उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए टीचर को बुलाते। अब बाबा हमेशा कहते थे बाबा सबको एक जैसा ही पढ़ाते थे, चाहे दादियां बैठी हैं चाहे महारथी बैठे कोई भी बैठे हैं, बाबा सबको एक जैसा ही पढ़ाते थे। बाबा बता रहे हैं कि जैसे लौकिक पढ़ाई में क्या करेंगे, कोई डल होगा तो ट्यूशन रख देते हैं, और कोई बच्चों को अच्छे मार्क्स लेना होता है तो स्पेशल टीचर भी रखते हैं। उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए टीचर को बुलाते हैं, ये तो तकदीर बनाने के लिए सबको एक रस पढ़ाते हैं, एक एक को अलग अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे। बाबा बैठ के एक एक को थोड़ी ज्ञान सुनाते रहेंगे, तो बाबा कहते एक एक को अलग अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं ऑफर करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते, जो बड़े लोग होते हैं पैसा लगा करके बच्चों को ट्यूशन कर देते हैं फिर वो पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि ये डर है इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। ये टीचर ऐसा नहीं करते हैं, बाबा ये नहीं कहेंगे चलो तुम्हारे को विशेष पढ़ाता हूँ, बाबा तो गाइड करते हैं, इशारा देते, बैठ कर के अलग थोड़ी पढ़ाएंगे। तो बाबा कहते ये टीचर ऐसा नहीं करते हैं, ये तो सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना टीचर कुछ कृपा करते। बाबा के पास आते थे ना कई बच्चे, बाबा को कहते थे बाबा हमारे ऊपर कृपा करो, बाबा कहते मैं क्या कृपा करूंगा, मैं कृपा करूंगा तो तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे, अपनी कृपा अपने ऊपर खुद करनी है तब जाकर के ऊंच पद मिलेगा। तो बाबा कहते एक्स्ट्रा पुरुषार्थ टीचर कुछ कृपा करते हैं। भल ऐसे भी पैसे लेते हैं दुनिया में, भल ऐसे जो पैसे भी लेते हैं, खास टाइम दे सकते हैं जिससे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते। दुनिया में होता है ना पढ़ाई करते हैं ट्यूशन रखते हैं तो उसका पैसा देते हैं। ये बात तो सबका एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव, बस एक बाप ही पतित पावन है, उनकी याद से ही हम पावन बनेंगे, वह तुम बच्चों के हाथ में है। अभी ऊंच पद पाना बाबा के तुम बच्चों के हाथ में है, जितने याद करेंगे उतने पावन बनेंगे, सारा मदार हरेक के पुरुषार्थ पर है। वह तो तीर्थों पर यात्रा करने जाते हैं, एक देखकर क्यों देखकर भी जाते, तीर्थ यात्रा पर एक जाएगा ना दूसरा कहेंगे तुम जा रहे हो तो मैं भी चलता हूँ, उसको कभी अकेले जाना होगा तो कहेंगे नहीं जाएंगे, एक लोग को सुनाते हैं तो साथी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तो तीर्थों पर यात्रा करने जाते हैं, एक दो को देख करके भी जाते हैं, तुम बच्चों ने भी बहुत यात्राएं की हैं। जिन्होंने बहुत यात्राएं की हाथ खड़ा करो, बहुत कम है। और बाबा के बच्चे तो पूरा भक्ति भी बहुत की है, यात्राएं भी बहुत की हैं, तुम बच्चों ने भी बहुत यात्राएं की हैं, फिर क्या हुआ नीचे ही गिरते आए हो, यात्रा किस लिए की है, इससे क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं था, अब तुम्हारी है याद की यात्रा, अक्षर भी एक है। यात्रा करने का साधन क्या है, मन मना भाव, तो बाबा जी के अक्षर भी एक है, मन मना भाव, ये यात्रा तुम्हारी अनादि है। वह भी कहते हैं हम ये यात्रा अनादि काल से करते चले आए हैं। अब बाबा बता रहे तुम्हारी यात्रा ऐसी अनादि है, और वो लोग भी कहते हैं कि यात्रा हम अनादि काल से करते चले आए हैं। अभी तुम ये ज्ञान सहित कहते हो कि हम कल्प कल्प ये यात्रा करते हैं, ये यात्रा खुद बाप ही आकर सिखलाते हैं, उन यात्रों में तो कितने धक्के खाते हैं, कितना शोर होता है, वह यात्रा है उसमें तो कितना आवाज करते हैं, कितना धक्के खाते, ना भी होगा तो गीत गाते नाचते गाते जाते तो उनका पता भी नहीं पड़ता है कि उन्होंने यात्रा की, लेकिन आवाज करते। बाबा कहते हैं ये यात्रा है डेड साइलेंस की, वो यात्रा शोर की आवाज की, और ये यात्रा है डेड साइलेंस की। एक बाप को ही याद करना है, इससे ही पावन बनना है, तुम्हें बाप ने ये सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा सिखलाई है, वह यात्रा तो तुम जन्म जन्मांतर करते ही रहे, फिर भी गाते रहे, क्या गाया, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। बाबा कहते कितनी यात्राएं की, फिर भी बाबा से दूर होते गए, गाते भी हैं, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। भगवान से तो दूर ही रहे ना, भगवान तो नहीं मिला ना, यात्रा की लेकिन बाबा तो नहीं मिला ना, यात्रा में आकर फिर बेकारों में जाते हैं, तो फिर क्या फायदा। जब तक यात्रा करते हैं, पहले जमाने में यात्रा करते थे तब तक पवित्र रहते थे, और यात्रा में जाने से पहले ही वो अपना प्रैक्टिस अच्छी कर लेते थे, फिर यात्रा करके आए फिर वही के वही बेकारी हो जाते। तो बाबा कहते हैं यात्रा से आकर फिर बेकारों में गिरते हैं तो क्या फायदा। अभी तुम बच्चे जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आए हैं, एक दिन सभी जान जाएंगे कि बाप आया हुआ है। वो समय भी आएगा कि सब जान जाएंगे कि बाबा आया हुआ है, एक दिन सभी जान जाएंगे कि बाप आया हुआ है। भगवान आखिर मिले कैसे, ये तो कोई भी नहीं जानते हैं, कोई तो समझते हैं कुत्ते बिल्ली में मिलेगा। पहले बहुत भावना होती थी लोगों की कुत्ते बिल्ली ठिक्कर भीतर में, और अभी तो खैर ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते तो कोई तो समझते हैं कुत्ते बिल्ली में मिलेगा, क्या इन सब चीजों में भगवान मिलेगा। कितना झूठ है, झूठ ही खाना, झूठ ही पीना, झूठ ही रात में बिताना, खाना भी झूठा बोलना भी झूठा। देखो तो सही, झूठ तो उनके मुख में ऐसा पड़ा है, हर बात के अंदर झूठ ही झूठ बोलते रहते हैं। तो बाबा कहते झूठ ही खाना, झूठ ही पीना, झूठ ही रात बिताना, इसलिए ये है झूठ खंड। सच खंड स्वर्ग को कहा जाता है, भारत ही स्वर्ग था, स्वर्ग में सब भारतवासी थे, अब सभी भारतवासी नरक में हैं। ये तो तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो कि हम बाप से श्रीमत लेकर भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। उस समय भारत में और कोई होता ही नहीं, एक ही भारत, एक ही धर्म, सब एक होता है, और कोई धर्म इतने सब जाति पाति ये सब कुछ नहीं होता है। तो बाबा कहते उस समय भारत में और कोई होता ही नहीं है, सारा विश्व पवित्र बन जाता है। अभी तो कितने ढेर के ढेर धर्म हैं, बाप सारे झाड़ की नॉलेज सुनाते हैं, तुम्हें फिर से स्मृति दिलाते। कौन सी स्मृति, तुम सो देवता थे, फिर वैश्य शूद्र बने, फिर जाकर के देवता बनेंगे। तो बाबा कहते हैं फिर से तुमको स्मृति दिलाते हैं, तुम सो देवता थे फिर वैश्य शूद्र बने, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। ये अक्षर अभी कोई भी कोई सन्यासी उदासी विद्वान द्वारा सुने कि तुम ही शूद्र थे, तुम ही फिर जाके ब्राह्मण बनते, फिर देवता बनते। बाबा कहते वो भले आप ही पूजे, आप ही पुजारी कहते हैं। बाबा कहते ये शक्त अक्षर तो कभी नहीं सुने ना कि तुम ही देवता क्षत्रिय वैश्य बनते, तुम ही देवता बनते हो। तो बाबा कहते ये अक्षर ना तो किसी सन्यासी ना किसी विद्वान से सुने हैं। ये अक्षर कभी कोई सन्यासी उदासी विद्वान द्वारा सुने हैं। ये हमसों का अर्थ बाप कितना सहज कर सुनाते हैं। हमसो माना मैं आत्मा, मैं आत्मा ही पावन बनती हूँ, मैं आत्मा ही पतित बनती हूँ। हमसो माना मैं आत्मा, हम आत्मा ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं। वे तो कह देते हम सो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। कितना अंतर, वो क्या बोल देते हैं, परमात्मा सो आत्मा, आत्मा सो परमात्मा। लेकिन बाबा कहते हम सो मीन्स मैं आत्मा, कितने महान, कितने फिर धीरे धीरे स्टेजेस में आते हैं। वे तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो हम आत्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। एक भी नहीं जिसको हम सो अर्थ के, हम सो के अर्थ का पता हो, एक भी नहीं जिसको हम सो के अर्थ का पता हो। बाप कहते हैं ये जो हम सो का मंत्र है सदा बुद्धि में रहना चाहिए। पहला मंत्र क्या दिया, मन मना भव, याद की यात्रा, और दूसरा मंत्र हमसों का मंत्र सदा बुद्धि में रहना चाहिए। नहीं तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। वह तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते हैं। भारत का उत्थान और पतन गाया हुआ है, सतो प्रधान सतो रजो तमो सूर्यवंशी चंद्रवंशी। अभी तुम बच्चों को सब कुछ मालूम पड़ गया है, सूर्यवंशी कौन थे, चंद्रवंशी कैसे आते, फिर द्वापर में आते, फिर क्या करते। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चों को सब कुछ मालूम पड़ गया है, एक बात बीज रूप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह इस सृष्टि चक्र में नहीं आते हैं, ऐसे नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा बन जाते। देखो कितना अंतर, बाबा ने कहा तुम बच्चे पुरुषार्थ करते करते बाप समान बनते हो, बाप तो नहीं बनेंगे ना, उन्होंने आत्मा को परमात्मा ही बना दिया, कितना अंतर हो गया ना। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा बन जाती हैं, नहीं बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते। बाबा बच्चों को आप समान बनाते हैं, जैसे बेटा होगा तो बेटा तो बेटा रहेगा ना, बाप तो बाप ही रहेगा। तो इसलिए बाबा कहते बाप अपने बच्चों को आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते। अब देखिए अंतर, आप समान गॉड नहीं बनाते, आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। इन बातों को अच्छी तरह समझना चाहिए, तब ही बुद्धि में चक्र चल सकता है। बाबा कहते जब ही समझेंगे हम सो देवता बनते, क्षत्रिय वैश्य बनते, चक्र का पक्का रहेगा तब चल सकता है। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, तब ही बुद्धि में चक्र चल सकता है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो, तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे 84 के चक्र में आते हैं। इसमें समय वर्ण वंशावली सब आ जाते, कौन से समय में क्या थे, फिर हमारा वर्ण क्या था, हमारी वंशावली क्या थी। तो बाबा कहते सब आ जाता, इसमें वर्ण समय वंशावली सब आ जाते हैं। इस नॉलेज से ही ऊंच से ऊंच बनते हैं, नॉलेज होगी तो फिर औरों को भी देंगे। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होता है तो पेपर आदि भराते हैं, पेपर बुलाज से आते हैं। उस समय उस दिन भी बाबा ने मुरली में बताया ना, बाबा के टाइम पर ज्योति बहन जो कि चंद्रा बहन की बच्ची यहाँ पर ही उन्होंने स्कूल में भेजा था, खास इसलिए कि बाबा के नजदीक रहेगी और बाबा का साथ में प्यार भी मिलता रहेगा। तो ज्योति बहन जो है जयंती और ज्योति ये दोनों की जोड़ी थे, दोनों छोटे छोटे थे, बाबा के ज्ञान में आए तो जयंती बहन तो लंदन में ही पढ़ रही थी, ज्योति बहन को चंद्रा बहन ने यहाँ पर ही सोफिया स्कूल में ही भेजा था। तो जब छुट्टी के दिन होते थे दादा विश्व रतन जाते थे, उनको लेकर के आते थे और खूब टोली आदि खिलाते थे, बहुत पालना करते, बहुत प्यार दिया बाबा ने। तो बाबा ने उसे एक दिन पूछा तुम्हारे पेपर कहाँ से आते हैं, तो बोला विलायत से आते हैं। तो क्योंकि इंग्लिश स्कूल है और वहां से कॉन्वेंट स्कूल है वहां से आते थे, तो आज भी बाबा बता रहे देखो पेपर विलायत से आते हैं, जो विलायत में पढ़ते होंगे तो उनके पेपर कहाँ से आएंगे, वहीं से आएंगे ना, फिर उस पेपर को कौन एग्जामिन, तो ठीक है वो पेपर को कौन देखेगा, वो बाबा बता रहे हैं जो विलायत में पढ़ते होंगे उनमें से भी कोई बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर होगा जो जांच करते होंगे, जो पेपर होता है फिर उसके बाद जांच करते हैं ना, फिर रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, तो बाबा की तो उसमें भी कोई बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर होगा जो जांच करते होंगे। अब फिर बाबा और बता रहे अब बताओ यहाँ तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेगा, आप बताओ कौन करेगा, शिव बाबा करेगा ना, जो कहते हमारे पेपर की जांच शिव बाबा करेगा वो हाथ खड़ा करो, सब हाथ खड़ा करो ना, अच्छा, और जो कहते हैं शिव बाबा नहीं करेगा, ठीक है, जो कहे अब बाबा ने बहुत अच्छा कहा तुम अपने पेपर की जांच तुम ही करोगे, पता पड़ जाता ना हमारा पुरुषार्थ क्या, स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसको मालूम है मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो मेरा पे रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ तुम्हारे पेपर्स की कौन जांच करेगा, तुम खुद ही करेंगे। अब सुन लो ड्रामा में जो है वो तो है ही, लेकिन जांच खुद ही करनी, तुम खुद ही करेंगे, खुद जो चाहिए सो बनो, खुद जो चाहिए सो बनो, उतना ही फल मिलेगा, उन्हें सर्विस करने का फिक्र रहेगा। बाबा कहते हैं उन्हें सर्विस करने का जो पढ़कर जो बाप से पद पाना चाहो वह लो, बाबा बता रहे फिर से बताते हैं तुम खुद ही करेंगे, खुद जो चाहिए सो बनो, पढ़कर जो पद बाप से लेना चाहो वह ले लो, जितने बाप को याद करेंगे उतना सर्विस करेंगे उतना ही फल मिलेगा, जो भी पद पाना है बाबा कहते खुद पुरुषार्थ करके पाओ, उन्हें सर्विस करने की फिक्र रहेगी कि राजधानी स्थापन हो रही है तो प्रजा भी तो चाहिए ना, वहाँ वजीर आदि की दरकार ही नहीं रहती है, यहाँ तो जब अकल कम होता है तब वजीर की दरकार होती है। सच्चू में बाबा कहती वजीर की कोई दरकार ही नहीं है, बाबा कहते हैं वहाँ वजीर आदि की दरकार ही नहीं रहती, यहाँ तो जब अकल कम होता है तब वजीर की दरकार होती है, यहाँ बाप के पास भी राय लेने आते हैं, कहते हैं बाबा पैसा है क्या करे, आप बताओ समझदार, पैसा है तो लगाओ सेवा में, कई तो ऐसे बहुत पैसा है इकट्ठा करके रखते ही रहते हैं सेवा में नहीं लगाएंगे, फिर जब धीरे धीरे वो गवर्नमेंट लूट लेगी या इधर उधर हो जाएगा तब कहेंगे मैंने क्या किया। फिर कई आते थे बाबा से राय लेने, बाबा हमारे पास पैसा है क्या करें, तो बाबा तो समझ जाते जो पूछ रहा है ना इसके मन के अंदर कुछ है, तो बाबा फिर उसको क्या उत्तर देते हैं, तो बाबा कहते हैं यहाँ बाप के पास राय लेने आते हैं, बाबा पैसा है क्या करें, धंधा कैसे करें, बाप कहते हैं ये दुनिया के धंधे आदि की बात यहाँ नहीं लाओ, बाबा समझ जाते थे पैसा है ना धंधे में लगाता है जमा करके रखा है ना खुद यूज करता है ना सेवा में लगाता है, ये धंधा करूं, अभी भी कई आते हैं पूछते रहते हैं ये करें वो करें ऐसे करें, अरे करना कुछ तो करो ना, कहीं तो लगाओ, इकट्ठा करके रखे रहेंगे लेकिन लगाएंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं ये दुनिया की धुंधे आदि की बात यहाँ नहीं लाऊं, हाँ कोई दिल शिकस्त हो जाए तो थोड़ा बहुत आहत देने के लिए बता देते। कभी किसी का पूरा दिवाला निकल गया, कुछ नहीं है, फिर बाबा उनको गाइड करते थे, क्योंकि बाबा खुद भी, ब्रह्मा बाबा खुद भी बड़े बिजनेसमैन रहे हैं, तो बाबा गाइड करते थे कि कैसे थोड़े से स्टार्ट करो, धीरे धीरे करो। तो बाबा उनको आथत देने के लिए करते थे। तो बाबा कहते हैं हाँ कोई दिल शिकस्त हो जाए तो थोड़ा बहुत आथत देने के लिए बता देते हैं, लेकिन ये मेरा कोई धंधा नहीं है। अभी भी कई बच्चे आते बाबा को कहते मेरे पास आएंगे, क्योंकि भोग लगाते हैं, बाबा को पूछना मैं ये धंधा करूं, कौन सा धंधा करूं। बाबा कहते मैं धंधे के लिए आया हूं क्या, धंधा तो तुम्हारा ही अपना हिसाब किताब है, जो करने करो, तो उसमें क्या करना है, बाबा को याद करके करो। तो ये भी कई ऐसे मुझे ही रहते हैं, क्या करूं क्या करूं करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन ये मेरा कोई धंधा नहीं है, मेरा धंधा है तुम्हें पतित से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाने का, तुमको बाप से श्रीमत लेते रहना है। अभी तो सभी की है आश्रय मत, वहाँ तो सुख धाम है, वहाँ कभी ऐसे नहीं पूछेंगे राजी खुश हो, पूछते हैं लोगों यहाँ आएंगे खुश हो तबीयत ठीक है। अभी एक बात बता दे, अभी बाबा ने भी कहा यहाँ आते हैं तो क्या करते हैं, कई हम देखते हैं किसी को पूछने जाएंगे तुम्हारी तबीयत ठीक है, वो तो पूछना तो क्या सारी राम कहानी अपनी, मैं भी बीमार था, मेरे को भी ऐसा हुआ, मेरे को अरे ये क्या सुना रहे, पूछने आए उसको 15-20 मिनट तो अपनी राम कहानी सुना दे। बाबा कहते ना ऐसी अपनी राम कहानी सुनाओ और ना किसी को पूछो, जो बीमार है उसको खुशी में लाओ। तो आज देखो बाबा यही बता रहे हैं, वहाँ तो है सुख धाम, यहाँ कभी वहाँ ऐसे नहीं पूछेंगे कि तुम राजी खुश हो तबीयत ठीक है, ये अक्षर यहाँ ही पूछा जाता है, वहाँ ये अक्षर होते ही नहीं है, दुख धाम के कोई भी अक्षर वहाँ होते नहीं, परंतु बाप जानते हैं बच्चों में माया की प्रवेशता होने के कारण बाप पूछ सकते हैं ठीक ठाक राजी खुश हो। बाबा के पास आते थे, बाबा बच्चों के चेहरे को देख के रूहानियत खुशी को देखकर समझ आते थे कि ये खुश हैं, पुशारत अच्छा है, कोई कोई थोड़ा मुरझाया होता था, फिर बाबा उनको पूछ लेते अच्छा खुश हो, फिर बाबा उनको रास्ता बताते थे खुश होने का। यहाँ मनुष्य यहाँ के अक्षर को तो समझने, यहाँ के अक्षर को तो समझ होने के कारण बाबा के मनुष्य यहाँ के अक्षर का तो समझ ना सके, बाबा फिर बता रहे हैं, बाबा कहते मनुष्य के यहाँ के अक्षर को तो समझ ना सके, कोई मनुष्य पूछे तो कह सकते हो कि हम ईश्वर के बच्चे हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि तुमसे अगर कोई पूछता है तो उनको क्या कहना है, कोई मनुष्य पूछे तो कह सकते हो हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खराबत पूछते हो। लौकिक में चलते ना खुश खराबत पूछते हैं, खास पूछने जाएंगे तो बाबा कहते तुम बच्चे क्या कह सकते हो, हम तो ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खराबत पूछते हो। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह अब मिल गया, अब क्या परवाह है, ये हमेशा याद रहना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। ये भी बुद्धि में ज्ञान है, जब हम पावन बन जाएंगे फिर लड़ाई शुरू होगी, तुमसे पूछेंगे तुम कहेंगे हम तो सदैव कौन है बताओ, सदैव क्या बताएंगे, खुश राजी हैं, क्या बोलेंगे हैं, कभी कभी नहीं होते ना मुंह नीचे कर लेते राजी हैं, बाबा ने आज पक्का करा दिया सदैव खुश ये स्टेज रखनी है, खुश भी रहना है राजी भी रहना है सेटिस्फाई रहना है, तो रोज ये बात ये ऐसा है वो वैसा है, बाबा कहते नहीं तुमसे कहेंगे हम तो सदैव राजी हैं, बीमार भी हो तो क्या कहना है, क्या कहना है, बीमार भी हो तो क्या कहना माता है, खुश राजी हैं, और कभी कभी बीमारी में होती छोटी सी वर्णन इतना करेंगे, बहुत लंबा वर्णन करेंगे। दादियों को हमने देखा कितना भी कुछ परीक्षा आई लेकिन कभी वर्णन नहीं किया, चेहरे से भी अपना वो स्वरूप नहीं दिखाया, अंदर ही अंदर बाबा को साथ लेके चले। तो बाबा किसी बीमार भी हो ना, ये बहुत एक ऐसा सारा कहानी बीमार के साथ, पता नहीं कहाँ कहाँ की लंबी कहानी, अपनी कहानी सुनाएंगे, फलाना बीमार हुआ तो उसने ये दवा खाई थी, फलाना बीमार हुआ तो उसने ये दवा खाई थी, वो भी कहेगा फलानी दवा मेरे को भी ला देना, फिर उसको दवा ला के दे देंगे, ना वो सूट करेगी ना वो सूट करेगी। इसलिए बाबा कहते हैं एक ही चीज पे चलो, चारों तरफ ये सब न है वो हमको नहीं करना है, अंदर से खुश रहना है। तो बाबा कहते बीमार भी हो तो राजी रहो, बाबा की याद में हो तो स्वर्ग से भी यहाँ जास्ती राजी हो। यहाँ पर बाबा की याद में है वो सुख जो मिलता है, सच्चू में तो नहीं रहेगा ना, बाबा की याद में हो तो स्वर्ग से भी यहाँ जास्ती राजी हो। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है, हमको कितना लायक बनाते हैं, फिर हमको क्या परवाह है, हमको किसकी क्या परवाह है, बाबा इतना दे रहे हैं। ईश्वर के बच्चों को किस चीज की परवाह है, अब हम देखते हैं बाबा के बच्चों को, बाबा हर तरह से भरपूर करता, स्थूल सूक्ष्म भरपूर ही रखते, तो कोई चीज की कमी नहीं है। तो बाबा क्या कहते हैं, ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है, बाबा हमारे ऊपर ताज रखते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राउन प्रिंस। तो आज आप सब कौन बन गए, क्राउन प्रिंस। तो आज का टाइटल, बाबा ने हमारे ऊपर ताज रखा है तो हम हैं क्राउन प्रिंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राउन प्रिंस। बाप का ताज बच्चों को, बाप का ताज बच्चा ही पहनेगा। तुम समझ सकते हो सचु में सुख ही सुख है, प्रैक्टिकल में वह सुख तब पाएंगे जब वहां पर जाएंगे, वह तो तुम जानो। बाबा कहते हैं तो तुम ही जानो, तुम जाएंगे तुम ही पाएंगे, मैं तो वहां आता ही नहीं हूँ। प्रैक्टिकल में तुम जाएंगे तो पहनेंगे, ये तुम समझ सकते हो कि सचु में सुख ही सुख है, प्रैक्टिकल में वह सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे, वह तो तुम ही जानो। सचुग में क्या होगा, ये शरीर छोड़ हम कहां जाएंगे। अभी तुमको प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं, तुम जानते हो सच सच हम स्वर्ग में जाते हैं, वह तो कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु उनको पता ही नहीं कि स्वर्ग और नरक किसको कहा जाता है। कलक की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है, जन्म जन्मांतर ये ज्ञान सुनते सुनते नीचे गिरते आए हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम कहां से कहां गिरकर आए। एक तो वो लोग ज्ञान कलक की आयु लाखों वर्ष कह दिया, लेकिन बाबा कहते तुम जानते हम क्या थे और कहां से ऊपर से नीचे आके पड़े हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम कहां से कहां आकर गिरे हैं, सचु से गिरते ही आए हैं। सचु स्टार्टिंग में हाई, फिर धीरे धीरे एक एक कला कम होती गई, इसलिए बाबा कहते सचु से लेकर गिरते ही आए हैं। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पहुंचे हैं, कलप कलप बाप आते हैं पढ़ाने के लिए, बाप के पास तुम रहते हो ना, बाबा आते हैं पढ़ाते हैं और हम बच्चे बाबा के पास है, बाप के पास तुम रहते हो ना, ये हमारा सच्चा सच्चा सतगुरु है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। जैसे ये बाबा भी सीखते हैं ऐसे इनको देख तुम बच्चे भी सीखते हो। अब शिव बाबा बता रहे देखो ब्रह्मा बाबा कितना सीखते हैं, और उनको देख करके हमारे सामने तो बाप और दादा है, ब्रह्मा बाबा के सामने तो एक शिव बाबा, और हमारे सामने तो दो है, शिव बाबा भी है और ब्रह्मा बाबा भी है। तो बाबा कहते हैं जैसे ये बाबा भी सीखते हैं ऐसे इनको देख तुम बच्चे भी सीखते हो। बाबा के पुरुषार्थ को देख करके कभी कभी बच्चे डिसहार्टेंड हो जाते थे, हम नहीं कर सकते, तो बाबा कहते थे देखो जैसे ये बाप कितना पुरुषार्थ करता है तो तुम भी ऐसे कर सकते हो। इसलिए बाबा कह रहे हैं जैसे ये बाबा भी सीखते हैं ऐसे इनको देख तुम बच्चे भी सीखते हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी होती है, मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है, अंदर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। बाप को घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते, बाबा बार बार याद दिलाते, बच्चे क्या करते हैं बाप को घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। और बाप एक तो बाबा को भूले, फिर दूसरा क्या भूलते हैं, बाप को बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तो बाप को भूलने से बाप की शिक्षा भी भूल जाती। एक तो बाबा को भूल जाते, फिर बाबा ने जो शिक्षा दी वो भी भूल जाते। बाप को भूलने से बाप की शिक्षा भी भूल जाते हैं, हम स्टूडेंट हैं ये भी भूल जाते। बाबा को भूले, शिक्षा भूले, हम स्टूडेंट हैं ये भी भूल जाते हैं। है बहुत सहज, बाप की याद में ही करामात है। बच्चे कितने अच्छे अच्छे अनुभव करते हैं, बाबा को याद करते हैं, याद करने से बाबा की कितनी मदद मिलती है। तो बाबा कहते हैं बाप की याद में ही करामात है, ऐसी करामात और कोई बाप सिखला न सके। इस करामात से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। जो धर्म सच्चू और त्रेता आधा कल्प चलता है, सच्चू त्रेता में केवल एक ही धर्म आधा कल्प चलता है, फिर दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। जैसे क्राइस्ट आया पहले तो बहुत थोड़े थे, आया तो पहले तो बहुत थोड़े थे, पहचानते ही नहीं थे, कितना ऑपोजिशन हुआ, फिर धीरे धीरे उसको पहचानने लगे, धीरे धीरे वृद्धि हुई। तो बाबा कहते जैसे क्राइस्ट आया पहले तो बहुत थोड़े थे, जब बहुत हो जाए तब राजाई कर सके। क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने हैं। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था, जब वृद्धि हो रही है, बाबा कहते हैं अब वृद्धि हो रही है, कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले कहेंगे ना कि किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया, वो हमारा है प्रिसेप्टर है तो हम उसी के हैं। तो क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं, पहले एक क्राइस्ट आया फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है, एक से दो, दो से चार, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना बड़ा हो गया है। फाउंडेशन तो है देवी देवता धर्म, कितने भी धर्म हैं सभी बड़े हो गए हैं, लेकिन बाबा कहते सभी धर्मों का फाउंडेशन एक ही देवी देवता धर्म है। फाउंडेशन है देवी देवता घराना, इसलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। परंतु भारतवासियों को ये भूल गया है कि हम परम पिता शिव परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं, ये भूल चुके हैं कि हमारा पिता कौन है, परमात्मा शिव है। परंतु भारतवासियों को ये भूल गया है कि हम परम पिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। क्रिश्चियन भी समझते हैं कि आदि देव होकर गए हैं जिसके ये मनुष्य वंशावली, वो कहते हैं एडम और ईव, हम सब मनुष्य जो हैं उनकी वंशावली हैं। और वो क्राइस्ट को गॉड नहीं कहते, क्राइस्ट ने भी गॉड को माना है, गॉड इज वन, तो क्या है कि आदि देव आदि देवी को सभी धर्मों में अलग अलग नामों से मानते हैं। क्रिश्चियन भी समझते आदि देव होकर कह रहे हैं जिसके ये मनुष्य मनशावली है, बाकी वे मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ना, अपने धर्म पिता को ही मानेंगे ना। क्राइस्ट को बुद्ध को फादर समझते हैं, सिजरा है ना, उनके धर्म का पिता तो वो है ना, तो बाबा कहते हैं उनकी डायनेस्टी है। जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तब तुम्हारा भी यादगार यहाँ आबो में के नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर तपस्या से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर चैतन्य रूप में तपस्या कर रहे हैं ना, जिसलिए बाबा कहते हैं वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तब तुम्हारा यादगार यहाँ आबू में है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सा, पहला है डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी। बाबा ने बता दी ना आपकी सच्ची यात्रा है डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। हम सो का मंत्र सदा याद रखना है, तब वो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। दूसरा, मनसा वाचा करना बहुत शुद्ध रहना है, अंदर कोई भी गंदगी ना हो, कदम कदम पर सावधानी रखनी है, श्रीमत का रिकॉर्ड रखना है। वरदान, निर्माता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुखदेवा सुख स्वरूप भव। निर्माता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुखदेवा सुख स्वरूप भव। आप महान आत्मा की निशानी है निर्माता, जितने निर्माण बनेंगे उतने सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा, जो निर्माण है वह सबको सुख देंगे, जहाँ भी जाएंगे जो भी करेंगे वह सुखदायी होगा, तो जो भी संबंध संपर्क में आए वह सुख की तो जो भी संबंध संपर्क में आए तो वह भी सुख की अनुभूति करें। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा। आज बाबा बता रहे कौन है सुख देवा, तो सबको सुख देते सुख लेते चलो, कोई आपको दुख दे तो लेना नहीं। स्लोगन, सबसे बड़ा ज्ञानी वह है जो आत्म अभिमानी रहते, सबसे बड़ा ज्ञानी वह है जो आत्म अभिमानी रहते हैं। अभी हम सुनेंगे आज का सोमान। आज का सोमान है 25 तारीख। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। सोमान, मैं एक व्रता हूँ। सोमान, मैं एक व्रता हूँ। योग अभ्यास, मैं आत्मा एक व्रता हूँ। एक बाबा पर एकाग्र, एक बाबा पर एकाग्रचित हूँ। एक बाबा दूसरा न कोई, इसी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर अपने संकल्पों को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति से अनेक आत्माओं की चाहनी पूरी कर रही हूँ, विश्व को शक्तियों का दान दे रही हूँ। धारणा, मन और बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करना चिंतन विश्व की मांग व चाहना पूरी कैसे करेंगे। विश्व की मांग व चाहना पूरी कैसे करेंगे आज का व्यक्त इशारा सुनेंगे। आज है 25 तारीख। आज का अव्यक्त इशारा, संगम है ही संतुष्टता का युग, तो संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। आपस में कभी भी कोई खिटपिट ना हो, क्योंकि माला बनती है संबंध से। आपस में कोई भी खिटपिट ना हो क्योंकि माला बनती है संबंध से। अगर दाने का दाने से संपर्क ना हो तो माला बन नहीं सकती है। तो माला के मणके हो इसलिए संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। आप सभी परिवार वाले हो, परिवार का अर्थ है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। अच्छा, ओम शांति। जैसा कि आपको बताया कि आज क्रिसमस डे है, ज्ञान शो में बहुत से डबल विदेशी भाई बहने पहुंचे हैं और खास करके यूथ ग्रुप और इंटरनेशनल चिल्ड्रन ग्रुप। क्रिसमस या दिसंबर के लास्ट वीक में क्रिसमस हॉलीडे होते हैं, ऐसे टाइम पर विदेश के बच्चों को भी छुट्टियां होती हैं, तो विदेश के बच्चे भी आते हैं और युवा ग्रुप भी आता है, उनकी रिट्रीट चलती है। तो ज्ञान शो में इंटरनेशनल चिल्ड्रन रिट्रीट भी है, इंटरनेशनल यूथ भी, भारत के नहीं है केवल विदेशों के हैं, उनके कार्यक्रम के लिए कल काफी विदेशी भाई बहने आ चुके हैं। तो आज शाम को ज्ञान शो में ही क्रिसमस सेलिब्रेशन का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि 5:30 से शुरू होगा। 5:30 से 6 एक वीडियो दिखाएंगे, 6 से 7 बजे तक क्रिसमस सेलिब्रेशन का कार्यक्रम है। जिनके पास अपना साधन है जाना चाहे तो वहां जा सकते हैं। और अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे, उनको आज के सारे दिन का प्रोग्राम बताया जाएगा। नाउ विल सिट इन बाबा रिमेम्बर्स एंड आफ्टर दैट ऑल द डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स विल स्टे।